से भारत को भारत बांटने में बनाना है।
सर जी मेरा नाम है शरद, मेरे साथ है हमारे कप्तान गौतम गंभीर। अच्छा एक चीज आप जानते हैं, 130 करोड़ के आबादी वाले इस देश में अब तक सिर्फ 21 लोगों को परमवीर चक्र से नवाजा गया है, 21, और इनमें से सिर्फ 3 जीवित हैं, और इन 3 जीवित परमवीर चक्र विजेताओं में से एक विजेता सूबेदार योगेंद्र यादव जी, जो हमारे देश के सबसे कम आयु के परमवीर चक्र विजेता है। फोन लगाइए सर, फोन लगाइए। योगेंद्र यादव जी नमस्कार।
नमस्कार सर, नमस्कार।
जो करंट आता है ना आपकी आवाज सुन के,
थैंक यू,
बहुत बड़े हम फैन हैं आपके।
जी जी जी।
लेकिन मेरे बगल में हॉट सीट में आपके एक और बहुत बड़े फैन बैठे हैं।
कौन सर?
अभी एक और फैन है, उनकी आवाज अब आप सुनेंगे।
जी
योगेंद्र यादव जी, मैं गौतम गंभीर बोल रहा हूँ।
अरे गौतम जी, जय हिंद।
जय हिंद। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और इनफैक्ट जिस तरीके से पूरा देश आपका फैन है, मैं भी उतना ही बड़ा फैन हूँ आपका।
अरे थैंक यू सर, थैंक यू।
अच्छा आप प्लीज लिसनर्स को अपने एक्सपीरियंस बताइए, जो कारगिल में आपने किया है वो बहुत जरूरी है सारे लिसनर्स को सुनने के लिए।
जब ट्रोलिंग के ऊपर हमारी बटालियन लड़ाई लड़ रही थी, तो 22 दिन तक हमें जो 15 जवानों की टीम थी, उसको एक टास्क मिला था कि नीचे से ऊपर अपने साथियों को राशन पानी ले जाने का था। उसी 15 जवानों की टोली में से सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2 घंटे में नीचे आते थे। ये पता नहीं था कि एक कदम चलने के बाद हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन एक कुछ और जुनून था अपनी भारत माता के लिए और अपने उन साथियों के लिए कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो हमारे विश्वास के साथ में वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है और उनके विश्वास को हम कम नहीं होने देंगे। और मुझे आज भी याद है, हम एक एक करके ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन ने एक साथ अचानक फायर खोल दिया, जिससे हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुँच पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। वहाँ पर हमने 5 घंटे तक लगातार फायरिंग किया, मेरे तमाम जो 6 साथी थे शहीद हो गए। और मैं देख रहा हूँ कि जब हमारे जवानों की डेड बॉडियों के अंदर गोलियां दाग रहे थे और डेड बॉडी ऐसे उछलती थी, मैं चुपचाप पड़ा रहा। मेरे भी बाजू में, जांग में, नीचे पैर में 3 जगह गोलियां मारी, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। और फिर एक अपने अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उस तक नहीं करूंगा। फिर बाद में उनका एक कमांडर था, उसने हमारा नीचे जो हमारा एक पोस्ट था, उस पोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए अपने साथियों को सूचना दिया। जैसे वो सूचना मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे ही लगा यार आज तो मेरे पूरे साथी खत्म हो जाएंगे। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। उनके कमांडर ने बोला कि इनके वेपन उठा लो, तो उनका एक जवान आया दोबारा सा करके गोलियां मारने लगा। और फिर भी मेरे बाजू में, पैर में गोली मारी। गोली मारने के बाद जब एक कदम आगे चला, तब मुझे लगा यार हो सक अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो पीछे से पूरा चलते चलते पैंट फट गई थी, तो पर्स रखा हुआ था यहाँ ऊपर वाली जेब के अंदर।
अच्छा।
उस वाली गिलेट के 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। जब गोली चली तो जाकर के वो सिक्कों पे लगी और रिकॉजिट होगी। उस गोली के धक्के से मुझे भी खुद आभास हुआ कि शायद मैं मर गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा 1K47 उठा करके जब वापस मुड़ा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तभी एकदम से मुझे चेतना आई, मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तब एक अंतरात्मा से आवाज आया कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसकी कार्य से होती है।
आपने गूज़बम्प्स दिला दिए जिस तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंस बताया। पहले तो ये बताइए कि अब आपका हाथ कैसा है?
हाथ सर ऊपर उठता नहीं है, बाकी तो ठीक है। लोड लेते हैं, फूल जाता सर ये।
और हम श्योर कि जो भी लिसनर्स आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे, आई थिंक उन सारे लिसनर्स को जरूर गूज़बम्प्स होंगे, और उनको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी किस तरीके से उन्होंने कारगिल में हमारे लिए लड़े थे, और किस तरीके से आज हम जो सोच सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो सब आप लोगों की बदौलत ही है।